श्री राम जय।
श्री राम जी कहते कि भरत जी को जब राज्य नहीं मिला था तब तक वे मुझे प्रिय थे, और जब भरत जी को राज्य मिल गया तो वो मुझे प्राण प्रिय हो गए। भरत प्राण प्रिय पावहिं राजा। प्राण प्रिय भरत जी को राज्य मिले, अच्छा बोलो हमें लग सकते कोई प्राण प्रिय? हमें मिलने वाली चीज उन्हें मिल जाए और धोखे में हमें रखा जाए, फिर जिसे मिल जाए वो प्राण प्रिय लगेगा कितने ही खास क्यों ना हो? प्राण प्रिय नहीं लगे, उसके प्राण ही प्रिय लगेंगे। पर भगवान कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहिं राजा। अब भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आई, कोई इस राज्य रूपी दूध को स्वीकार नहीं कर रहा है। और कितना बढ़िया वर्णन किया, सुनिए सुधा देखिए गरल। अमृत केवल सुना जाता है, आज तक मिलता नहीं कहीं। सुनते हैं अमृत, लेकिन बिस हर जगह मिल जाता है, चाहे जहां खरीद लो। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूत कराल। इसी तरह राम जी युवराज पद पर बैठेंगे, ये सुना गया लेकिन दिखाई क्या पड़ा? राम जी को बन जाते लोगों ने देखा, 14 वर्ष राम बनवासी। ये सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूत कराल। और किसकी वजह से हुआ? जहां तहां काक उलूक बक कौए उल्लू बगुले। ये काक कौन? काक समान पाक रिपु रीति, छली मलीन कतहु न प्रतीति। पाक रिपु माने इंद्र, कौए के समान है इंद्र, जिनको अच्छा नहीं लगा और सरस्वती माता के द्वारा मंथरा की बुद्धि बदलाई काक। और मंथरा कौन? उलूक उल्लू। अच्छा उलूक क्यों? जो संत की निंदा करे वो उल्लू। होय उलूक संत निंदा रत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानु गत। जो संतों की निंदा करते मिले समझ लो उल्लू हैं ये। और राम जी जैसे महात्मा की निंदा की मंथना ने उलू, और बक कह कई माता बगुला एक पांव से खड़ा, बिल्कुल तरुण तपस्वी की तरह लगता, श्वेत निर्मल। पर कब तक रहता है? जब तक मछली नहीं दिखाई पड़ी। मछली दिखती तुरंत पकड़ता है मछली को। कह कई माता भी बिल्कुल राम जी की भक्त, लेकिन कब तक? जब तक राज्य रूपी मछली नहीं दिखाई पड़ी। राज्य रूपी मछली दिखते ही असली रूप प्रकट हो गया। ये सुनैना जी कह रहे हैं, जहां तहां काक उलूक बक मानस सकृत मराल। हंस तो मान सरोवर में होते हैं, और ये मान सरोवर है शंकर जी का हृदय, और ये दो बंधु संभ उरवासी। शंकर मानस राज मराल। तब सुमित्रा जी को भी बल मिला। सुमित्रा जी ने भी कहा देवी मोह बस सोचिए बा। सुमित्रा जी ने कहा सुन ससोच कहे देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। विधाता की गति बड़ी विपरीत है विचित्र है। जो सृज पालई हरई बहोरी, बच्चों जैसा खेल है। पहले दुनिया को बनाए, फिर पालन करे, फिर मिटा दे। बाल की सम विधि मति भोरी, बच्चों के खेल के समान विधाता की बुद्धि भोली है। अच्छा चलो, सृजन तो ब्रह्मा जी का काम है, पालन भगवान विष्णु का काम है, और संहार शंकर जी का काम है। पर ये केवल विधाता है, कोई कह रही जो सृज पालई हरई बहोरी। अरे सृष्टि के लिए नहीं कह रही वो, इसलिए कह रही कि अगर राम जी का राज्य नहीं होना था, विधाता को पता था, तो दशरथ जी के मन में इच्छा क्यों जागृत की? और इच्छा जागृत हो भी गई थी तो फिर पालन क्यों कराया? सारी विधियां पालन कराई, और जब पालन कराई तो फिर बिगाड़ क्यों दिया? ये विधाता का निर्णय ही समझ में नहीं आता। सृज पालई हरई बहोरी, बाल खेली सम विधि मति भोरी। अब सब लोग विधाता को दोष दे रहे हैं, सुनैना जी भी कहती विधि बुद्धि बाकी और सुमित्रा जी भी कहती विधिगति बड़ी विपरीत विचित्रा, लेकिन धन्य है माता कौशल्या ने कहा कौशल्या कहे दोष न काव। कौशल्या माता कहती किसी का दोष नहीं। तो ये दुख सुख जो दिखाई पड़ रहे हैं कर्म विवश दुख सुख क्षति लाभ, ये कर्म का फल है।
अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो वो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, राही जागो अपने अनमोल जीवन की श्वासा व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो, अपने अनमोल जीवन की श्वासा में खो ही चुके हो।
प्रारब्ध है कर्म की तीन गतियां, संचित क्रियमाण प्रारब्ध। संचित से बचा जा सकता है, क्रियमाण से भी बचा जा सकता है, पर प्रारब्ध से नहीं बचा जा सकता। आप ऐसे समझें तर्कस में बाण रखे हैं, एक बाण धनुष पर चढ़ा लिया है और एक बाण चल चुका है, तरकस में जो बाण रखे हैं उनसे बच सकते हैं, नहीं चलाएंगे। क्रियमाण से भी बच सकते हैं, धनुष पर चढ़ा हुआ बाण उतार के रख लें, लेकिन जो बाण चल चुका है वो प्रारब्ध है, उससे नहीं बचा जा सकता। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे क्रियमाण मिट जब अहम मिट, संचित मिट जब ज्ञान, पर भोगे से प्रारब्ध मिट वेद भेद यह ज्ञान। अजब प्रारब्ध भी तीन तरह के, इच्छा प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध परीक्षा प्रारब्ध। हम लोगों ने इच्छा की वस्तु मिल गई, कई बार लोग हम सोच ही रहे थे और ये चीज मिल गई, ये इच्छा प्रारब्ध। कुछ अनिच्छा प्रारब्ध, सर्दी जुखाम बुखार काफ खांसी, ये कोई चाहता नहीं, पर ये अनिच्छा प्रारब्ध है कि नहीं? चाहने से मिल जाए तो इच्छा प्रारब्ध और नहीं तो अनिच्छा प्रारब्ध। अच्छा एक होता परीक्षा प्रारब्ध, एक आदमी बेचारा आराम से बैठा है, तब तक दो आदमियों झगड़ा हो गया और दोनों खड़े होकर लड़ने लगे, अब वो कहे रुको रुको रुको, लड़ते लड़ते उसी के ऊपर गिरे, अब उस बेचारे का कुछ लेना नहीं देना नहीं, वो कुचल गया, हाथ पांव में चोट लग गई उसके, भैया तुम्हें चोट कैसे लगे कैसे, अरे हम लड़ ही नहीं रहे थे भैया क्या बताएं, वो दूसरे लड़े हम पे गिरे, ये परीक्षा प्रारब्ध है। दूसरे के कारण अपने को दुख मिलना परीक्षा प्रारब्ध, बिना कारण अनिच्छा दुख मिले तो अनिच्छा प्रारब्ध, और इच्छा करने से वस्तु मिले तो इच्छा प्रारब्ध। इसलिए कौशल्या माता कहती है किसी का दोष नहीं है, कौशल्या कहे दोष न काहू कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। अच्छा आप ऐसे सोचो, एक आदमी अपना लोटा लेकर निकले, कमंडल लेकर निकले, कुएं के पास जाए पानी के लिए। अरे कुआ तो छोटा है, तालाब के पास चलते, तालाब कुएं से बड़ा है, अब तालाब के पास गया। अरे नहीं नहीं तालाब से भी बड़ी नदी है, नदी के पास गया। नहीं 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 नदी से भी बड़ा समुद्र है, अब समुद्र में लोटा डुबाया। इतना परेशान होते हुए इतने बड़े के पास गया। अरे समुद्र बिल्कुल बड़ा है, लेकिन ये तो सोचो आपका कमंडल तो उतना ही है। इसी तरह कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाहि, सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। अपने कर्म का कमंडल लेकर जहां जहां जाते हैं, चाहे जाओ बड़ों बड़ों के पास जाओ, बूंद न अधिक समाए। एक महात्मा बड़े फकड़ी स्वभाव के संत थे, वो कहते थे भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग के आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। वो कहते थे भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता कि ना मिले, और भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता। अपना प्रारब्ध ही ऐसा है निश्चित रूप से। इसलिए ये सोचकर बेकार दोष मत दो किसी को, इतने बड़े आदमी के पास गए और ये कुछ नहीं हो रही है कुछ। अरे उसका क्या, तुम्हारा कर्म कमंडल ही तो नहीं है। एक बार एक महात्मा जी के आश्रम में दो पंडित जी ठहरे थे, ब्राह्मण देवता, श्राद्ध पक्ष, रोज निमंत्रण हो, रोज जाए और खुश होते हुए लौटे। स्वामी जी पूछा और पंडित जी क्या हाल। अरे महाराज आपकी कृपा है, खूब आनंद। एक दिन दोनों गए कहीं निमंत्रण में, लौट के आए तो एक बड़ा उदास और एक खिलखिलाता हुआ खुश। स्वामी जी ने कहा क्या बात है पंडित जी, तुम उदास दिख रहे, तुम अलग अलग जगह गए थे। नहीं नहीं स्वामी जी एक ही जगह गए थे। समझ गया उसने बिठाने उठाने में स्वागत में अंतर किया होगा, तुम्हें नीचे बिठाए ना ऊपर, नहीं एक ही जगह बिठाया। भोजन में अंतर किया होगा, तुम्हें कुछ खिलाया हो इन्हें कुछ, नहीं नहीं जो इन्हें खिलाया तो हमें। महात्मा बोले हम समझ गए दक्षिणा में अंतर किया होगा। बोले नहीं नहीं वो भी 5 रुपए नहीं मिले, 5 हमें मिले। महात्मा ने कहा जब एक जगह गए, एक जैसा स्वागत हुआ, एक जैसा भोजन मिला, एक सी दक्षिणा मिली, तो ये परेशान क्यों, तुम प्रसन्न क्यों? तो जो परेशान था उससे पूछा क्यों। अरे बोले महाराज कुछ मत पूछो, हम रास्ते भर सोचते जा रहे थे कि आज इतने बड़े आदमी के यहां जा रहे हैं, कम से कम 11 रुपए तो देगा, उसने 5 ही दिए, इसलिए हम दुखी हैं। जो प्रसन्न था उनसे पूछा, पंडित जी हंसकर बोले बोले महाराज हम जानते थे कि बड़ा आदमी तो है पर नंबर एक का कंजूस है, 2 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। हमने सोचा था 2 से ज्यादा नहीं देगा, और ये सोच रहे थे कि कम से कम 11 देगा, तो हम सोच रहे 2 से ज्यादा, 5 मिल गए तो हम तो खुश हैं कि जिससे 2 की आशा थी उससे 5 मिले, और इन्हें 11 की आशा की थी इन्हें 5 मिले, ये परेशान है। इसी तरह अपने प्रारब्ध से मिलने वाले भोग को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अपनी मानसिक कल्पनाओं से परेशान होते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे का दोष न देखे। एक महात्मा का कहा हुआ वाक्य, प्राप्त को ही पर्याप्त समझो, कौशल्या जी कहती किसी का दोष नहीं, निज कर्म विवश दुख सुख क्षति लाघु। अच्छा चलो कर्म विवश ही मान लो कि भाग्य के कारण ये सब होता है। अब मैं आपसे इन सब महापुरुषों की उपस्थिति में एक बात पूछता हूं कि प्रारब्ध के कारण ही हमारा जन्म होता है। अच्छा तो जब सबसे पहले सृष्टि हुई होगी, सबसे पहले, तब किसी का कौन सा प्रारब्ध रहा होगा जिससे जन्म हुआ, और जब प्रारब्ध नहीं रहा तो जन्म शुरू कैसे हुआ? तो इसका भी उत्तर देने वाले लोग हैं। वो कहते हैं अरे नहीं, जब पहले सृष्टि का प्रलय हुआ था तब सभी अपने अपने कर्मों के संस्कारों को लेकर सो गए, और जब सृष्टि शुरू हुई तो उन्हीं संस्कारों के आधार पर फिर यात्रा शुरू हुई। तो फिर पूछने वाला कहता है कि हम तो प्रलय पूछ ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं जब सबसे पहले सृष्टि हुई तब किसका क्या प्रारब्ध रहा हो। अब बड़ी कठिनाई। तो कहा कि देवी कौशल्या जी ने कहा कि यह अज्ञान है, पर जिन्हें नहीं समझ में आता उनके लिए ये ज्ञान ठीक है। फिर ये है क्या? का ये ऐसे समझो, जगत सब सपना, स्वप्न में भासता है, होता कुछ नहीं, भास रहा है। और अगर ये भी बात समझ में ना आए तो भगवान की लीला हो रही है। तीन ही दृष्टियां हैं, किसी एक को मान लेने पर हम तनाव से मुक्त हो जाएंगे, पर उसके बारे में ज्यादा ना सोचें। भाई हमारा जैसा भाग्य था वैसे ही हो गया, भगवान की इच्छा है, हरि ये संसार तो सपने के समान है। ये तीन ही बातें बताई गई। लेकिन अगर कौशल्या जी ने जो बात कही बड़ी अद्भुत है, देवी मोह बस सोची है बादी, अज्ञान के कारण व्यर्थ तुम ऐसा सोचती हो, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ये विधाता का प्रपंच है, अनादि काल से चला आ रहा है, ये ऐसे चलता चला जाएगा, इसमें अकल लगाओ मत, बस देखो। तमाशा देखने के लिए होता है, जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं तो देखने के लिए है, अकल लगाने के लिए नहीं है। वो एक बार सिनेमा देखने एक सज्जन गए, छोटा बेटा उनके साथ था, तो सिनेमा में दिखाई पड़ा जलेबियां बन रही थी और लोग ले लेकर खा रहे थे। तो छोटा बेटा अपने पिताजी से बोला, पिताजी का चुप बैठो क्या बात है, जलेबी। पिता बोला अरे ये देखने के लिए है, खाने आने के लिए नहीं, चुप बैठो देखो। नहीं दिलाई जलेबी, अब दिलाए भी कैसे। थोड़ी देर में एक दूसरा दृश्य दिखाई दिया, उसमें एक नल की टोंटी खुली, पानी बह रहा था, लड़के पी रहे थे। सो बोला पिताजी हम पानी पी आए। पिता बोला चुपचाप बैठो देखने के लिए है। सो बेटा बोला इसमें कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं जो पानी नहीं पीने देते, उसमें तो पैसे खर्च होने थे। अरे भाई पैसे खर्च और न होने की बात ही नहीं, ये केवल देखने के लिए है। इसी तरह ये संसार भी भगवान का बनाया हुआ खेल है, ये केवल देखने के लिए है, अकल लगा के हैरान परेशान होने के लिए नहीं। इसे तो देखते जाओ और भजन करते जाओ, राम 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 करते जाओ। यह विधि प्रपंच अस अचल अनादि, अनादि काल से चलाया है, अनंत काल तक जाएगा, अचल है, बस अपने राम राम करते रहो। कौशल्या जी ने यह भी कहा कि राम जाहि बन राज तज भल परिणाम न पोच। राम जी वन में चले जाएं, लौट कर आ जाएंगे, परिणाम अच्छा है, बुरा नहीं हो। इतना कहते कहते कौशल्या माता की आंखों से आंसू बरसने लगे। ये आंसुओं का कारण क्या? श्री सीताराम जी को वन में देखकर कष्ट तो मन में होगा ही। नहीं नहीं, राम सुपत में कीन न काऊ, सोकरी कहू सखी सती भाऊ। मैंने आज तक राम जी की सौगंध नहीं की, पर आज मैं श्री राम की सौगंध करके कह रही हूं, राम जाहि बन राज तज भल परिणाम न पो। राम जी बन चले जाएं, राज्य छोड़कर परिणाम अच्छा होगा बुरा नहीं, लेकिन ये आंसू क्यों? कौशल्या जी कहते हैं, गहवर ही ये कहे कौशिला, मोहि भरत कर सोच। मुझे तो मेरे भरत की चिंता है। आंसू आ गए कौशल्या और कैकेयी माता गिलान से गलकर पश्चाताप की ज्वाला में दग्ध हो रही है। कौशल्या जी कहती है, मुझे भरत की चिंता है, क्योंकि महाराज दशरथ बार बार कहते थे, जानेऊ सदा भरत कुल दीपा। भरत जी को कुल का दीपक समझना। श्री दशरथ जी के साथ सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो गया है। रही मणि जाय दीख रघुवंश मणि, मणि वन में चली आई, मणि के साथ फणी लक्ष्मण जी। अब तो दिए का ही सहारा है और भरत जी कुल के दीपक हैं, लेकिन इस दिए को शोक की हवा बुझा न दे। काही न शोक समीर डुलावा, इसीलिए महाराज जनक से प्रार्थना करना कि भरत राम जी के साथ ही रहें, चाहे वन में चाहे भवन में, क्योंकि भरत कुछ कहेंगे तो नहीं, भरत कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन यह सही है कि राम जी के बिना रह नहीं सकेंगे।
गूढ़ सने भरत मन माही, रह नीक मुहे लागत नाही।
श्री जानकी जी को लेकर सुनैना माता लौटी और जनक जी ने जब जानकी जी को
तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विसेखी।
वनवासिनी वेश में बेटी को देखकर विदेहराज के नेत्र सजल हो गए, गौरव हुआ मन में, लेकिन उन्हें एक ही बात लगी, किसी तरह की एक बार घटना घटी, किसी पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, बेटी ससुराल गई, देव योग उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। शोकाकुल परिवार एकत्रित हुआ, पिता भी गया, बेटी की इस विदाई के मौके पर सदा सदा के लिए विदा हो गई। भाव भरे हृदय से उसने दो पंक्तियां कही कि इसकी समाधि पर लिखवा देना, दिया जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीदें ना मुरादी, दिया जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीद ना मुरादी में, कफन देना ही भूले थे फकत सामान्य शादी में। इसी तरह आज विदेह राज सोच रहे हैं, बेटी को विदा करते समय ये बलकल वस्त्र देना ही हम भूल गए थे, लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी ने हमारे दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, पिता के कुल को भी, पति के कुल को भी। बेटियों की बड़ी महिमा है। अब तो हे भगवान, सुनो भैया, एक बार क्या हुआ महाराज, किसी के घर बेटे का जन्म हुआ, इतना उत्सव। महात्मा उस गांव में गए हुए थे, उनके पास महाराज, उनको भी विदाई, वस्त्र, फल, माला और धूमधाम। महात्मा जी बोले, क्या हुआ ये 1100 रुपए, ये महाराज आपके सेवक के घर बेटे का जन्म हुआ। इतना खुश। अगली बार महात्मा फिर गए 2-3 साल बाद, संयोग से महात्मा वहीं थे, उसके घर सेवक के घर फिर जन्म हुआ। महात्मा सोच रहे थे कि आता होगा, वो नहीं आया, न बैंड न बाजे न फूल न माला। महात्मा को हंसी लगी, क्या हुआ, बुलाया, तुम्हारे घर से? हाँ हमारा, क्यों क्या हुआ? बेटी हुई है। बोल तो बोले, बेटी हुई है तो भी तो कुछ देना चाहिए, अब क्या महाराज दें? महात्मा बोले, ना होए 100 रुपया दे तो, बैंड बाजे न बजाए, थोड़े बहुत बाजे बजा, माला फूल। अरे उत्साह क्यों नहीं है बेटी के होने में? बोले महाराज, अब लोक धारणा बता रहे। बोला कि बेटी से कोई नाम चलता है, बेटे से नाम चलता है, बेटा हो तो नाम चलता है, यही कहते, बेटे से नाम चलता है। अच्छा सही बात बताना, बेटा नाम चलाता है कि नाम कटाता है? बुढ़ापे में पिता को बूढ़ा देखकर बेटे ही कहता है कि पिताजी, बाद में बड़ी दिक्कत होती है, आप अपने समय में ये जमीन हमारे नाम, मकान हमारे नाम। पिता कहता कि हाँ, लिख दिया। अब बाप का नाम कटा, बेटे का नाम लिखा, तो बोलो नाम कटा कि नहीं, कटाता है कि नहीं? जो कटाता है कहते नाम चलाता है। एक बोला, महाराज आप तो जाने कहां की बातें करते हो, बेटा बेटा होता है। महात्मा बोले, एक बात है, सबका अनुभव है, पिता बीमार हो और बेटी को खबर मिले, जहां खबर मिली वहीं से रोती हुई आएगी, दुखी होती हुई आएगी, पिता के पास बैठी रहे, रोती रहेगी, पिताजी अब कैसे, पिताजी। और बेटा, उससे लोग पूछो, पिता कई दिन से तबीयत खराब है, तो सेवा कर रहे हैं, लगे हैं, हम लोग अब कितना करें भाई, आखिर लगे हैं लोग, कष्ट तो बहुत है, हमें लगता है कि भगवान अब उनकी सुन ले, आखिर ये वो तो जाना ही, सबको जाना है बेटा। तो वो आदमी बोला, आप तो बेटों का विरोध करते। हमने कहा, ना भैया, ना हम बेटों का विरोध करते, ना बेटी का विरोध करते, लेकिन जो बेटी को कुछ नहीं समझते उनके लिए हम ऐसी बातें करते हैं। अच्छा बेटियों की समस्या भी है। एक आदमी कह रहा था, नंगे पांव आधी धोती लपेड़े आधी कंधे पे डाले, जल लेकर शंकर जी को चढ़ाता फिरे, मंदिर में महात्मा ठहरे थे उनके पास गया, महाराज रोने, क्या बात है, आज बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, भगवान पार लगा दे। और गया, अब वो लोग आए देखने वाले, जीप में बैठकर गाड़ी धमाधम धमाधम जैसे, अब उनको देखा, आइए आइए साहब, 8-10 आदमी, और बेचारी बेटी सवेरे से सजी बजी बैठी है बिल्कुल। अब उसे चलो, अब बेचारी चाय लेकर रह से खड़ी, अब देखने वाले देखते, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसके बाद प्रश्नों की बौछार, उसकी होने वाली साथी का भोजन बना लेती हो, अब बिचारी बोलने हलवा ऐसी करती जाती क्या करें, उसके होने वाले ससुर ने पूछा स्वेटर बुन लेती हो, अब सबने पूछा, अब पिता सोच रहे भगवान हे भगवान यहां कर दे, यहां कर दे। अंत में उसके होने वाले पति ने से किसी का तुम भी पूछ रहे हो, हां मैं ये पूछ रहा हूं, हां बोल तुम्हें गाना आता है नाचना आता है, ठीक है हम लोगों ने सब बातचीत कर ली है, अब वहीं से जाके फैसला करेंगे फिर खबर भिजवा देंगे, चलो 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 सब लोग चले। पिता बेचारा सवेरे से बिना खाए पिए स्वागत करिए, इतना कुछ निर्णय नहीं कर रहे, वहीं जाके बताएंगे वहीं वहीं जाके, पर वो भारतवर्ष की बालिका थी, उसमें गार्गी जैसा संस्कार था, उसने एक ही बात कही कि मैं भी आपसे कुछ पूछ लूं, आपके पूरे परिवार ने सवाल पूछे हमने हाँ हाँ उत्तर दिया, पति बोला वो हमसे हाँ तुम्हारे साथ हमें जिंदगी बितानी है तो तुमसे हम भी तो पूछ लें, पूछो उसने बोला क्या 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 पूछोगे पूछो पूछो, तो उस बालिका ने इतने कहा इतना ही कहा कि आपने कहा कि गाना आता, मैंने कहा हाँ, नाचना आता, मैंने कहा हाँ, अब मैं आपसे पूछ रही हूं तुमसे पूछ रही हूं पूछो तुम्हें तबला बजाना आता है, बोला नहीं नहीं आता, पर इससे क्या है इससे क्या, वो बोली जब तुम्हें तबला बजाना नहीं आता जब मैं नाचूंगी तो मेरे साथ तबला क्या तुम्हारा बाप बजाएगा, तुम क्या कैंसिल करते हो, हम अभी से ही कैंसिल करते हैं, जाओ भारतवर्ष की आर्य ललनाओं का ऐसा निर्णय होना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं बेटियां भी बढ़िया बेटे भी बढ़िया पर दोनों बढ़िया कब, एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, राम भजत बिटिया भली, राम भजत बिटिया भली विमुख भलो नहीं पूत, और शबरी तो वैकुंठ गई धुंधकारी भयभूत। धुंधकारी भी किसी का बेटा था प्रेत बना, आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा प्रेत बना, और शबरी किसी की बेटी थी वैकुंठ गई। आज विदेह राज कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो, श्री जानकी जी ने सोचा यहां रात्रि रहना ठीक नहीं, सुनैना जी से कहा, सुनैना जी ने भिजवा दिया राम जी के पास। जनक जी ने पूछा क्या कहा कौशल्या जी ने, सुनैना जी ने बताया अभी कह रही है भरत जी राम जी के संग रहे पंचायत में ऐसा फैसला हो जाए, श्री जनक जी कहने लगे सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी सुलो सुलो चनी सावधान सुनो
सुमुखी सुलोचनी सावधान,
सुमुखी सुलोचनी
भरत कथा भव बंध विमोचनी,
भरत कथा भव बंध विमोचनी,
हो राम सावधान। भरत जी की कथा भव बंधन से मुक्त करने वाली है तो आप सुनाएं। जनक जी बोले, धर्म राजनय ब्रह्म विचारू, धर्म राजनीति ब्रह्म विचार जैसे गंभीर विषयों का वर्णन मेरी बुद्धि कर सकती है। यहां जथामति मोर प्रचारू, पर ऐसी बुद्धि भी सोमति मोरी, भरत महिमा ही कहे का छुव सकत न छाही। भरत जी की कि चरित्र की छाया भी नहीं छू सकती। क्यों? छाया छुई तो जा सकती है, पकड़ी भले ही ना जा सके, पर छाया की छाया नहीं छुई जा सकती। श्री भरत जी तो स्वयं छाया हैं। भरत ही जान राम परिछाई। तो भरत जी की महिमा कौन जानता है? राम जी जान ही राम। अच्छा अच्छा, तो राम जी जानते हैं तो उन्हीं से जान ही राम न सकहीं बखाने। राम जी वर्णन नहीं कर सकते। रात्रि बीती सवेरा हुआ, अवधवासियों से वो कोल की रात कहते हैं, हम ही कृतार्थ करण लगी तृण फल अंकुर ले। अगर आप तृण कंदमूल फल स्वीकार कर लेंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दुहाई। सभा एकत्रित हुई, श्री भरत जी की ओर से जनक जी, श्री राम जी की ओर से गुरु वशिष्ठ। राम जी ने ये दो पंच बना लिए, विद्यमान आपुन मिथिलेशु, मोर कहव सब भांति भदेशु। अब दो पंच तो चुन लिए। राम जी कह रहे, मेरा बोलना भद्दा लगेगा, गुरुदेव आप बैठे हैं, महाराज जनक बैठे हैं। अब दो पंचों ने सोचा कि हम क्या निर्णय करें, तो इन दो पंचों ने एक तीसरा सरपंच चुन लिया आप। और तीसरे सरपंच कौन? श्री भरत। राम वचन सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत, सकल विलोकत भरत मुख, बनई न उतर दे। उतर दे
भरत जी उठकर खड़े हो गए। यहां राम जी को बोलना भद्दा लग रहा है जिस सभा में, उस सभा में श्री भरत जी बोल रहे हैं। पर भरत जी ने
ही ये सुमरी शारदा सुहाई, मानस थे मुख पंकज आए।
सरस्वती माता का नाम भरत भारती मंजुमनाली।
भरत भारती। मानो भरत जी नहीं बोल रहे, सरस्वती जी बोल रही हैं, और सरस्वती जी को प्रेरणा देने वाले राम जी सरस्वती जी के बहाने बोल रहे हैं। भरत जी ने यही कहा, आपके चरण कमलों की रज की सौगंध कर रहा हूं, प्रभुपद पदुम पराग दुहाई, सत्य सीम सुख सुकृत सुहाई, सोकरी कहूं हिये अपने की रुचि जागत सोवत सपने। क्योंकि गुरुदेव ने भी कहा मोरे जान भरत रुचि राखी, और राम सदा सेवक रुचि राखी, अपनी रुचि बताओ। भरत जी ने कहा मेरी रुचि एक ही है, प्रभु की सेवा में। भगवान बोले बन चलकर सेवा करोगे कि भवन ले जाकर हमारी सेवा करोगे? भरत जी बोले दोनों बातें नहीं कह रहे हैं। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा मिल जाए। राम जी के नेत्र सजल हो गए। आज्ञा तो पितु आयसु पाल ही दो भाई, दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तुम्हें कठिनाई तो होगी, लेकिन भरत मैं भी तो कह सकूंगा कि दुनिया के भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं, पर मेरे भाई ने मुझसे विपत्ति का बंटवारा किया है। फैसला हो गया, भरत जी ने कहा कि दर्शन चित्रकूट का कुछ दिन कर लूं। भरत जी एक ही बात बार बार कहते हैं, मोहि समान को पाप निवास। भगवान ने कहा कि भरत तुम अपने को पापी बोलते हो, क्या प्रमाण है कि तुम पापी हो? श्री भरत जी ने कहा प्रभु आपका वनवास ही इसका प्रमाण है, जेहि लगि सीय राम वनवास। भगवान ने कहा भरत तुम कहते हो तुम्हारे पाप के कारण मैं वन में आया, और मैं वन में ना आता तो मुझे महात्माओं का दर्शन कैसे होता? और महात्माओं का दर्शन तो पुण्य होता, मोह कहां दर्श तुम्हार प्रभु सम्मम पुण्य प्रभाव। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप के कारण मैं वन आया, मैं कहता हूं मैं अपने पुण्य के कारण वन में आया। अच्छा भरत एक बात सोचो, जिसका पाप इतना महान हो कि मेरे पुण्य की बराबरी करे, उसका पुण्य कितना महान होगा? इसलिए भरत तुम्हारे जैसा कोई। श्री भरत, श्री भगवान ने कहा उरानत तुम पर कुटिलाई, लोक जाए परलोक नसाई। भरत जो तुम्हें कुटिल समझेंगे उनका लोक परलोक नष्ट हो जाएगा। श्री निखाद राज के नेत्र सजल, उन्होंने भी भरत जी को कुटिल समझा, जो पे जी न हो तो कुटिल आई। लक्ष्मण जी ने भी कुटिल को बंधु को अवसर ताकि। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जो ब्रह्मवश भरत जी को कुटिल समझ के अपना लोक परलोक बिगाड़ चुके हैं, उनका लोक परलोक बनेगा कैसे? भगवान ने कहा मिटियहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। भरत जो तुम्हारा नाम लेंगे उनका लोक भी बनेगा परलोक भी बनेगा। श्री भरत जी ने 5 दिन में चित्रकूट का दर्शन किया। आज विदा की बेला है,
भल दिन आज जाने मन माही, भल दिन आज जाने जाने मन माही, जानी मन माया जाने मन माई
राम कृपालु कहत सब चाहे। अब राम जी ने गुरु जी की ओर देखा, जनक जी की ओर देखा, भरत जी की ओर देखा, सभा की। देखो संकोची आदमी की सबसे बड़ी समस्या एक होती है, वो बोल नहीं पाता, वो सोचता हमारी बात को दूसरा कोई बोल दे। तो राम जी सोचते हैं, गुरु जी कह दें कि राम अब चलें, जनक जी कह दें, भरत जी कह दें, सभा में से कोई कह दे। पर गुरु जी मनी मन सोच रहे हम क्यों कहें, गुरु का काम तो राम जी से मिलाना है, अलग करना थोड़े। जनक जी कह दें हमने फैसला क्या कर दिया जो हम कह दें। सभा में से भी कोई नहीं उठा तो सकुचि राम पुनि अवनि बिलोकी। और राम जी के शील को देखकर शील सराहि सभा सब सोची, कहुं न राम सम स्वामी संकोची। राम जी जैसा संकोची स्वामी कहीं नहीं। भरत जी ने अपने सिर भार देखा, उठकर खड़े हुए। आय सुदे ये देव अब सबई सुधारी हो। पर जाते जाते एक हठ कर लो, पूरा आप करना। अच्छा बोलो, विनती भरत करत कर जोरे, दीन बंधु दीनता दीन की कबौ परे जनी भोरे। तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, 14 वर्ष बीतने के बाद पहले दिन, जो रघुवीर न आई हो तो प्रभु चरण सरोज सपथ जीवित परिजन ही न पाया हो। भरत जीवित नहीं मिलेगा। राम जी रोने लगे, भरत को हृदय से लगाया, क्या भरत मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगा? लेकिन मेरी भी एक बात याद रखना, भूल होती सबसे न भूलना भरत भैया, माता सब एक भाव मन में समान हो, और जिस जननी ने जना तुम सा सुपुत्र भरत, स्वप्न में कभी ना केकई का अपमान हो। माता केकई का कभी अपमान ना हो। ये है श्री राम। भरत जी को बिना अवलंब की शांति नहीं है। प्रभु करी कृपा पावरी देनी। श्री भरत जो पादुका लाए, भगवान ने पादुका अपने चरणों में स्वीकार की, भरत को दी। धन्य है भरत, सादर भरत शीश धरी। प्रभु प्रदत्त पादुका को श्री भरत सिर पर रखे। भगवान राम ने सजल लोचन होकर कहा, भरत तुमने आधार मांगा था, हमने तो तुम्हारे सिर पर भार डाल दिया। श्री भरत जी बोले, नहीं प्रभु, भार नहीं आधार ही है। आधार कहीं सिर पर रखा जाता? हां, कब 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 सिर पर ज्यादा भार आ जाता है तो आधार सिर पर ही रखना होता है। हमारे कुली भाई रेल स्टेशनों पर इतना सामान रखते हैं तो सिर सामान के बीच में उनकी पगड़ी का आधार होता है। माताएं जल से भरा कलश सिर पर रखती हैं तो कलश सिर के बीच में उनके कुंडे का आधार होता है। श्री भरत ने कहा कि मेरे सिर पर लोगों ने अयोध्या के राज्य का भार डाल दिया, आपने पादुका दे दी, अब वो मैंने सिर पर रख ली, तो जो राज्य का भार मेरे सिर पर था आज से पादुका पर रहेगा, राज्य का भार उठाने का आधार। भगवान ने कहा कि भरत पादुका किसकी है? प्रभु आपकी। मेरी? हां। कैसे जानी जाएगी? तुम तो इसे अयोध्या ले जा रहे हो। श्री भरत जी ने कहा कि पादुका चित्रकूट में रहती है तो पहचान ली जाती, यही आप कहना चाहते? हाँ, श्री भरत ने कहा अयोध्या में भी पहचानी जाए, चित्रकूट में रहती तो आपके पद में, पांव में, आपके पद में रहती और अयोध्या में रहेगी तो आपके पद पर रहेगी। ये पादुका पद से कभी अलग हो ही नहीं सकती, चाहे पद में रहे चाहे पद पर रहे। पद में रहेगी तो भी पद का भार पादुका पर, और पद पर रहेगी तो भी पद का भार पादुका पर। अच्छा भरत एक बात बताओ, क्या तुमने तो पनही की शरण मांगी थी, मोरे शरण राम ही की पनही, मिल गई पादुका? श्री भरत जी ने कहा कि हां, पनही की शरण मांगी थी पर पादुका मिली। अर्थ बड़ा सरल सीधा है, वह यह है पादुका और पनही में एक अंतर है। पनही माने जूता, जूता भी पांव में रहता है, खड़ाऊ भी पांव में रहती है, लेकिन एक अंतर है, क्या? जूता पांव को संभालता है, खड़ाऊ को पांव संभालता है, इसीलिए कहते संभल कर चलो खड़ाऊ पहने। खड़ाऊ को पांव संभालता है, जूता पांव को संभालता है। श्री भरत जी ने कहा अगर पनही की शरण मुझे मिली होती तो अर्थ सीधा सा था कि आपके चरणों को मैं संभालूं, और पादुका मिली है तो आपके चरणों को मुझे नहीं संभालना पड़ेगा बल्कि आपके चरण ही मुझे संभालेंगे। ये बात है। अच्छा, खड़ाऊ की खूंटी को दो पकड़े रहते हैं, अंगूठा और उंगली, अंगुष्ठ और उंगली। मैं लकड़ी की खड़ाऊ की तरह आपके चरणों में पड़ा रहूं और मेरे विश्वास की खूंटी को अंगुष्ठ की तरह से एक ओर से आप और उंगली की तरह से एक ओर से जानकी माता, ये दोनों मिलके पकड़े रहें, यही मैं चाहता हूं। अच्छा भरत, तुम्हें क्या सहारा मिला? ये तो राज्य को भार उठाने का, तुम्हें? भरत जी बोले मुझे भी मिला। क्या? अभी तक आपको खोजने के लिए बन बन भटकना पड़ा, लेकिन अब नहीं भटकना पड़ेगा, अविश्वास है। मैं जहां होऊंगा वहां आप आएंगे। कहा क्यों आएंगे? भरत जी ने कहा कि प्रभु पादुका मैं लेकर जा रहा हूं, और पादुका कभी चरणों के पास चलकर नहीं आती, चरण ही वहां चलकर आते हैं जहां पादुका होती है। मुझे भी आधार मिल गया। श्री भरत जी ने तन पुलक शिथिल बरबानी, भरत रज धानी चले। तन पुलक
तन पुलक शिथिल बरबानी भरत रज दानी चली
तन पुलक शिथिल बरबानी भरत रज दानी चली
रघुवीर रजाय सुमानी भरत रज दानी चले
रघुवीर रजाय
सीताराम कमल पद परिके
सीताराम कमल पद परिके
चरण पीठ सादर सिर धरी के
चरण पीठ सादर सिर धर के
भरी के अखियान में पानी भरत रज धानी चले
भर के अखियान में पानी भरत रज धानी चले
भर के अखियान में पानी
भरत रज धानी चले भर के अखियान में पानी भरत रज
ज्ञान में पानी भरत रज दानी
भर के अखियान में पानी भरत रज दानी
सिंहासन प्रभुपाद का बैठा रे निरुपाद सिंहासनासीन कर दिया पादुकाओं को वे तो चित्रकूट से ही कहकर आए अस सुख जस सिय राम रहे थे ऐसा लग रहा है जैसे श्री सीताराम जी ही मिल गए भगवान ने कहा कि भरत हम पादुकाओं के रूप में तुम्हारे साथ अयोध्या जा रहे हैं श्री भरत जी ने कहा कि पादुकाओं में और आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं भगवान ने कहा कोई अंतर नहीं श्री भरत बोले तो एक काम करो आप पादुका के रूप से वन में चले जाओ इस रूप से अयोध्या चलो भगवान मुस्कुरा कर बोले भरत हम ऐसा करते लेकिन जहां हम जा रहे हैं वहां तो हमारे इस रूप में भी लोग नहीं पहचान पाएंगे कि हम हैं पर पादुका में कोई देखकर पहचान सके ये संभव नहीं है ये तो भरत तुम्हारी ही दृष्टि है कि तुम पादुका में भी मुझे देख लोगे इसलिए तुम्हारे और जनुजुग जामिक प्रजा प्राण के अवधवासी रात्रि को सोते सोचते कि बस रहा नहीं जा रहा है सरयू जी में डूब कर प्राण देना
कोई किसी से मर्म की बात नहीं कहता। रात को उठते तो एक इधर हाथ पकड़ लेता, दूसरा उधर हाथ पकड़ लेता, फिर सुला देता, फिर उठते, फिर कोई डूब नहीं पाता। ये कौन है? ये पादुकाएं हैं जन युग जाम एक प्रजा प्राण के, प्रजा के प्राणों की रखवाली करने वाली यह पादुकाएं। और श्री राम नाम के दो अक्षर आखर युग जन जीव जतन के, मानो हृदय के सिंहासन पर सीताराम जी आकर बैठेंगे, पर उसके पहले श्री राम नाम को हृदय के सिंहासन पर बिठा दें तो एक दिन भगवान सीताराम जी भी आकर विराजमान होंगे। भरत जी नंदीग्राम में रहे कुटिया बनाकर, नहीं नहीं गुफा खनन करके। किसी ने कहा भरत जी आप गुफा में बैठे, श्री भरत जी ने कहा कि गुफा का जन्म पृथ्वी से हुआ और श्री जानकी जी का जन्म भी पृथ्वी से हुआ, तो हमें लगता है कि हम गुफा में नहीं जानकी माता की गोद में बैठे हैं। और ऊपर आकाश की ओर देखते हैं तो नीलाम मुझे श्यामल कोमलांगम श्री राघवेंद्र की याद आती है, तो ऊपर पिता की छोह छत्र छाया, नीचे माता की ममता मई गोद। पुलक गात ही सी रघुवीरु नाम जी है जप लोचन नीरु। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं देह दिन ही दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। अच्छा भरत जी तपस्या कर रहे हैं पर तेज बल तो बढ़ना चाहिए, और तुलसीदास जी कहते हैं घटई तेज बल। वेदों से संपन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए कि तेज का वो अर्थ नहीं है, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, यहां घटाई क्यों। उन्होंने अलग अलग अर्थ दिए हों पर मुझे तो केवल एक अर्थ समझ में आया। जिनके जो अर्थ हैं उनको वंदन है, पर इस चौपाई को ऐसे पढ़ें देह दिन ही दिन दूबरी होई, यहां रुके नहीं। देह दिन ही दिन दूबर होई घटई, देह दिन दिन दुबली होकर घट रही है, लेकिन तेज बल मुख छवि सोई। तेजस्वी का मुख छवि वही की वही है। मुई भावे कही आवे ना भरत जू की रहनी, सीता रघुवीर लखन विरह पीर सहन। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनई, सी राम पद प्रेम अवश्य हो ये भवरस विरति। तेई पुन बसई भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। अवध राज सुर राज स्याही, यहां के राज्य पद पाने की इच्छा इंद्र रखते हो, वहां भरत जी बिना राग के रहते। भौरा चंपा के बगीचे में किसी कवि ने कहा चंपा तो में तीन गुण रूप रंग अरुवास, अवगुण ऐसा कौन जो भ्रमर न आवत पास। एक भक्त कवि ने उत्तर दिया, चंपा ने कहा चंपा वरनी राधिका, भंवर कृष्ण के दास, अपनी जननी जाने के भंवर न आवत पास। माता है तो अयोध्या की संपत्ति के पति रघुपति हैं, और वह संपदा तो भरत जी की माता है। भरत बिनु रागा। भगवान चित्रकूट में हैं। एक दिन प्रभु ने श्री सियाजू का श्रृंगार कराया। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहीं पहिराए प्रभु सादर। देखो मानस में एक बात तो है, हम लोगों को लगता है नारियों का सम्मान नहीं है, नारी निंदक। श्री तुलसीदास जी को बहुत लोग कहते हैं, और पता नहीं एक चौपाई तो सबको याद है, ढोल गमार सूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक महात्मा से एक मैया बोली, महाराज रामायण कथा कर रहा, ठीक है हमारे लिए तो बहुत बुरा लिखा, ढोल गमार सूद्र पसुनारी। तो महात्मा बड़े विनोदी थे, कहने लगे मैया तुम भी रो और हम भी रो। तुलसीदास जी महाराज तो लिख कर गए, सो बोली आप काय को रोगे, महात्माओं की तो बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी बोले ने आपकी तो बड़ी महिमा गाई है। महात्मा बोले हमारे लिए भी लिखा है। क्या लिखा है? नार मुई गृह संपत नासी, मूड मुड़ाए होए सन्यासी। लिखा कि नहीं? अरे बाबा आपके बारे में भी लिखा, ये तो हमें पता ही नहीं था। तुलसीदास जी किसी के विरोधी नहीं है, वे तो जिस वर्ग में कमजोरी देखते हैं वहां सजग भक्त की दृष्टि से, दृष्टि समाज की पड़े, इसलिए उसका चित्रण करते हैं, किसी का विरोध नहीं किया। एक सज्जन बोले नहीं इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। क्या बोले? तुलसीदास पहले तो कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने फटकारा तो तुलसीदास हो गए, तो उन्हें नारी जाति से घृणा ही हो गई। एक महात्मा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि इसका यह अर्थ नहीं है कि तुलसीदास जी महाराज रत्नावली माता की महिमा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास जी कुछ नहीं थे। बोले हां कुछ नहीं थे, वो तो फटकारा पत्नी ने, तुलसीदास हो गए। तो वो महात्मा बोले कि पत्नी के फटकारने से अगर कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। बोलो किसी फटकार नहीं मिलती, पर कितने बने। और आपको एक बात मैं आप बताऊं, जिस ग्रंथ में एक ऐसा अद्भुत प्रयोग है। चलो पहले एक बात और सुनाऊं मैं। एक बार एक सज्जन बोले माताओं की बड़ी निंदा है, बड़ी निंदा है माताओं की बड़ी। अरे हमने कहा सुनो, और बोले पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं। एक बोले पुरुष प्रधान समाज है, उन्होंने ग्रंथ लिखे इसलिए नारियों की। एक मैया हमसे बोली महाराज हम लोगों की तो बड़ी दुर्दशा है, ये नियम ऐसे रहे ऐसे रहे। अब बचपन में पिता के उसमें, युवावस्था में पति के उसमें, वृद्धावस्था में पुत्रों के उसमें, और हम पर हर कोई। हमने कहा कि मैया इसको आप निंदा के अर्थ में न देखो। वो बोली कोई हम पशु हैं जो हमें ज्ञान ना हो। हम कहे नहीं नहीं वो बात नहीं है, आप इसको निंदा के अर्थ में न लो, आप ऐसे लो कि हम लोगों के लिए कोई नियम नहीं है, पर अगर कोई पदासीन वीआईपी व्यक्ति आ जाए तो बोलो उसके नियम होंगे कि नहीं, प्रोटोकॉल होगा, इतने समय से इतने समय यहां, वो उनके निर्देशन में, वो उनके निर्देशन में, नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहिए। बड़ों बड़ों से कहा जाए आप यहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं, नियम होते कि नहीं। अच्छा मान लो किसी को हीरे की अंगूठी खरीदनी हो तो अंगूठी कोई टोकनी में रख के तो बेच नहीं रहा, को ले लो हीरे की, कोई सब्जी मंडी में तो रखी मिलेगी नहीं, विशेष बाजार में जाओगे। और बाजार में जाकर सराफा बाजार में विशेष दुकानदार से कहोगे तो कहोगे भीतर आओ, भीतर ले जाएगा, फिर आलमारी खोलेगा, आलमारी में फिर छोटी आलमारी और उसे खोलेगा, एक डिब्बा निकलेगा, डिब्बे का ढक्कन खोलेगा तो रेशमी गुलाबी कागज पर रखी हुई हीरे की अंगूठी चमकती हुई मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? कितने नियम है उसके लिए, क्योंकि वो कीमती है, वो हीरे की अंगूठी है, इसलिए उसके लिए नियम है, विशेष बाजार, विशेष दुकान, अलमारी, छोटी अलमारी, डिब्बा, है ना,
और आपने देखा होगा गल्ला मंडी में, अनाज मंडी में दुकानदार दुकान बंद करता है तो 20 किलो का बांट बाहर पड़ा है, 50 किलो का बांट बाहर पड़ा है। एक आदमी ने कहा कि आप दुकान बंद कर रहे हैं, महात्मा ने कहा ये बांट भी रखो, ये बाहर पड़े हैं बांट। अरे बोले महाराज लोहे के बांट है, इनका क्या पड़े रहने दो। हमें उस दिन समझ में आया कि माताओं के लिए इतने नियम क्यों हैं, पुरुषों के लिए क्यों नहीं। का भारतीय संस्कृति ने इन्हें हीरे की अंगूठी के रूप में देखा है इसलिए इतने नियम हैं, पुरुषों के लिए क्या नहीं, तो लोहे के बांट है चाहे जहां पड़े रहे, इनका क्या है। इसलिए माताओं आप गौरवान्वित हुआ करो कि हमारे लिए ऐसे नियम है, इनके लिए नहीं है। अच्छा फिर विचार करो जिस ग्रंथ में, अच्छा आपने देखा होगा माता पिता पति पत्नी की समानता की बात कही जाती, बिल्कुल ठीक है, आदरणीय। हमसे जो छोटा होता है उससे हम नेह करते हैं, बराबरी वाले से प्रेम करते हैं, अपने से बड़े का आदर करते हैं, बड़े का आदर किया जाता है। और आप आश्चर्य करोगे कि रामचरितमानस में पति के द्वारा पत्नी का आदर किया गया है। और मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, पार्वती जी आई, पार्वती भल अवसर जानी गई शंभुपा मातु भवानी, तो शंकर जी ने क्या किया, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा बाम भाग आसन हर दीन्हा। पार्वती जी के आने पर शंकर जी उनका आदर करते हैं, उठकर आदर करते हैं और आदर में भी अति लगी है, उठकर खड़े हो, आप बैठिए अब हम बैठेंगे, बैठिए विराजमान हो। और यही काम राम जी करते हैं, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, आगे सीतई पहिराए प्रभु सादर, आदर पूर्वक पहना है श्री सीता जी यह आभूषण। तो जिस ग्रंथ में पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया हो ग्रंथकार ने, उन महात्मा तुलसीदास जी को नारी निंदक कहना कहां का न्याय है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और सचमुच परिणीता के प्रति ऐसी आदर बुद्धि। अब लोग कहते समानता समानता, एक आदमी का हुआ विवाह, पत्नी को लेकर चला, पत्नी बिचारी रो रही थी, परिवार छोटा माता पिता छोटे, रो रही थी। अब पति ने घर आकर कहा कि तुम बहुत रो रही थी, उसने कहा कि ये तो होता ही है, उसमें क्या है, सब रोते हैं, बिछुड़ते हैं तो थोड़ी देर लगता ही है। पति बोला कि मुझे तो बड़ी गिलानी हुई, धन्य हो तुम, तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया, धन्य हो। तो बोले उसमें क्या है, सभी करते हैं। पति बोला नहीं, समानता तो तब होगी, देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं। क्या समानता है, अरे यह समानता नहीं है भैया। इसलिए हमारे देश में दो का सम्मान है, एक संत का एक सती का। संत वो जो परमेश्वर को पति मानकर जटाजूट बांधकर उनका हो जाता है, और सती वो जो पति को परमेश्वर मानकर बेणी गूंथ कर उनकी हो जाती है। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने सीतई पहिराए प्रभु सादर,